நஹ்மதுன் ஸல்லி அலா ரசூலில் கரீம் அம்மா பாத் கல்லாஹு தஆலா குர்ஆனில் மஜீத் அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் இன்னா அல்லாஹ வமலாயிகதுஹு யுஸல்லூன அலன் நபி جیسا کہ ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے مثل جیل کے ہے, یعنی ایک مومن کی زندگی جو ہے اس دنیا میں ایک قیدی کی حیثیت سے ہے. اب قیدی کی کیا زندگی ہوتی ہے, پریشانی مصیبتیں یہی ہوتے ہیں نا قید, نہ اپنی مرضی کا کھانا, نہ اپنی مرضی کا سونا, نہ اپنی مرضی کا پہننا, تمام چیزیں اس کی ختم کر دی جاتی ہیں. اور ہر لمحہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے گزارنا کہ کیسے میں زندگی گزاروں. تو اللہ پاک نے ایک مومن کی زندگی, ایمان والے کی زندگی, تو کیا ایمان کی یہ جزا ہے یا سزا ہے؟ جزا ہے حقیقت. اللہ کی ہر چیز بڑی حکمتوں پہ ہے. تو بلکہ جب پتہ ہی پہلے ہی بتا دی اللہ نے اس دنیا کے بارے میں انفارم کی ہے کہ ہے مصیبتوں کی جگہ یہ, تو پہلے تیار ہو جائے آدمی بھائی واقعی یہاں تو مصیبت ہے, منٹی تیار ہے, اللہ پاک نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے, سب چیز ہمارے لیے قبول ہے, ہمیں اللہ کی جو کچھ بھی ہے. لیکن اللہ پاک تو مومن سے بہت محبت فرماتے ہیں, جسے قرآن میں کہا یحبون یحبونہ, مجھ سے پیار کرتے ہیں ان سے پیار کرتا ہوں. کیا پیاری بات ہے, نہیں کتنا بڑا مقام دیا ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں. جب اتنے پیار کے تعلقات ہوں تو ہمیں جیل خانے میں بھیجے گا اللہ پاک. سوچے ٹھیک ہے جیل خانہ بنا دیا, لیکن اللہ پاک نے مومن کے لیے جیل خانے کو بھی جنت بنا دیا. سبحان اللہ, جیل خانہ ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں ایئر کنڈیشن لگایا ہے, ہمارے پاس اچھے بیڈ بھی دیے ہوئے ہیں. اس جیل خانے کو بہت سجایا ہوا ہے, ہم نے خود اس جیل خانے کو جیل خانہ خود ہی بنا لیا. اللہ نے تو انتظام بڑے کیے ہوئے ہیں, کتنا بہترین انتظام کیا ہے کہ اگر ہم اس انتظام کو اختیار کریں اپنی زندگی میں, تو الحمدللہ یہ جو جیل خانہ ہے یہ تو ایسے جنت بن جائے گا جو ہمیں جنت فردوس تک لے جا سکتا ہے. سارا قصور ہمارا ہے کہ ہم سمجھے نہیں اللہ کی رحمتوں کو, کو فضل کو, ہر بات پہ کرسائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ تو بڑا مشکل ہے جی, ایمان والوں کے لیے مصیبت ڈال دی ہے, یہ ہو گیا جی, فلاں ہو گیا. میرے بھائیو اللہ نے تو یہ ہمارے لیے بڑا اچھا انتظام کیا, اللہ کی قسم ایسا انتظام کیا ایمان والوں کے لیے کہ اگر وہ اس اختیار کرے تو اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی کوئی پریشانی کا نہ گزرے. قسم کھائی میں نے آپ کے ساتھ, کوئی مصیبت ہی نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی لمحہ اس کے لیے تنگ دستی گئی نہ ہو, وہ تو جنت میں ہو اور یہاں بھی جنت میں ہو, پھر اس کی وجہ سے اس کو وہاں بھی اعلیٰ درجہ جنت نصیب ہو. हम कदर ही नहीं करते बातों। कौशिक ने अल्लाह ताला कहता है कि इसमें मैंने मुश्किलात रखी हैं, परेशानी रखी हैं, इम्तहानात रखे हैं, मैंने ये भी कहा हस्तखुब तुझे दखल जानना, इम्तहान लूंगा तुम्हारे हर चीज से लूंगा, खाने से, खौफ से, पीने से, जानों से आजमाऊंगा तुम्हें। लेकिन उसके साथ इंतजाम भी ऐसा कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी आजमाइशें तुम पे सारी आसान हो जाएंगी, रास्ते खुल जाते हैं। क्या एहसान है अल्लाह ताला का, कितना गर्म है, कितना बड़ा फजल अल्लाह ने हमें दिया ईमान के साथ। हम उसको फजल ही नहीं समझते, हम मुसीबत समझते हैं आज के दौर में तो खास तौर पे। तो बहुत बड़ा हम अपने आप एक जुर्माना समझते हैं अल्लाह की तरफ से, क्या यार क्या मुसीबत है, बड़ा मुश्किल है। वही फजल है, सारा फजल उसी में बंद है, अल्लाह का सारा करम ही उसी में है, सारा उसी में है। वो क्या है, ये बहुत बड़ा आसान है कि अल्लाह ने, अल्लाह ने कुरान में हुक्म फरमा दिया कि मेरे हबीब की नकल करो। कोई होता है कि आपको खूब बहुत ही प्यारा बच्चा हो, बहुत खूबसूरत हो, तो दूसरे आदमी कहेंगे इसकी नकल करें मेरे बच्चे की, इजाजत देंगे आप? अल्लाह पाक ने है मेरा हबीब, कायनात में कोई इससे बड़ा नहीं, कोई इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं, कोई इससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं, कोई इसकी मिसल कोई नहीं। जैसे कि शायर ने कहा था ना आसान अल्लाह ताला, कहते अल्लाह ताला ने तो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया है। क्या तारीफ की है सुभान अल्लाह, वो चाहते ही नहीं कि मेरी नाक टेढ़ी हो, चाहते नहीं मैं, क्योंकि लगता ऐसे कि अल्लाह ने आपको मर्जी के मुताबिक आपको बना दिया, हुस्नुल्लाह जवाहर है आपका। हिंदू सिख दूसरे ईसाई मजहब के लोग जब वो नाते पढ़ते हैं, वो नाते पढ़ते हैं नबी की तारीफ करते हैं, तो उसकी उनकी खूबसूरती की उनकी जबान से सुनते आदमी हैरान हो जाता है, सुभान अल्लाह। नहीं सिख की जबान से सुनिए, वैदी बहुत बड़ा शायर नाथ खान नत पढ़ते हैं, करें क्यों ना, सारी कायनात मजबूर है उसकी तारीफ करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने जिसकी तारीफ अल्लाह ने की हो कौन कौन कर सकता। आप खुद सोचे कितनी बड़ी हस्ती को अल्लाह पाक ने हमें कहा कि तुम इसकी नकल करो, और शैतान ने क्या रिवर्स मारा है ईमान वालों पर। ईमान से बताएं अपने, हम अपने आप थोड़ा सोचें कि हम पागल हैं या सही हैं, उस खुद सोचे कि अल्लाह पाक इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं, इतना बड़ा कर्म कर रहे हैं कि जिसके लिए कायनात बनाई सुभान अल्लाह, जिसके लिए पहाड़ बनाए, समंदर बनाए, दरिया बनाए, अल्लाह रन करता है, खुले मौजूदात हैं वो तो, बाईस से मौजूदात कायनात हैं वो तो। उसका कह रहे हैं कि तुम उसकी तमा कर लो, नकल कर लो। ये जो आसान ईमान वालों को दिया है यही मुनफरिद करता है तमाम लोगों से, तमाम लोगों से ईमान वालों। अगर ये चीज में निकाल दें तो फिर तो बीच में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। याद रखेंगे बात, इतनी कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है, लेकिन अफसोस ये है इस इतनी कीमती चीज को जो है बिल्कुल अल्लाह पाक ने डाउन कर दिया, हमने अल्लाह ने हमें दिया, हमने इसको डाउन कर दिया। जहनों से, हमारे वजूद से, हमारे दिलों से उसकी वक्त निकाल दी शैतान, और ये शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी है इस तौर। जो नबी पाक में इत्तबा से हट के काम कर रहा है तो समझ जाओ ये शैतान ने पूरा इस पर काम कर दिया, बहुत बड़ी कामयाबी उसकी होगी। बहुत लोगों को तो यकीन ही दिला दिया कि इसकी अहमियत कोई नहीं, इसकी जरूरत कोई नहीं, ये कोई जरूरत नहीं है। तो लोग तो यहां तक कहते हैं कुरान ही काफी है, हदीसों को जमा कर लिया आप, कहते ही नहीं कहते, सारे कहते हैं मोमिन, हालांकि अल्लाह ने कुरान में सारा बताया। तो अगर इस जेल खाने से निकलना चाहते हैं हम, और इसी जेल खाने से हम जन्नत फिरदौस में जाना चाहते हैं, तो हम अपनी आदत को बदल दें, बस इतना है। अपने रुख को किधर फेर दें, इत्तबाए रसूल की तरफ फेर दें, सुन्नत रसूल।
बस इतना सा एक हमारी जिंदगी का मोड़ है।
अगर ये हमने कर लिया तो समझो ला इलाहा हमने पढ़ लिया, या फिर पढ़ लिया हमने पूरा। अगर ये नहीं है जिंदगी में तो बहुत दूर है, अभी हम इनकम्प्लीट इंसान है, कायनात में कोई वक्त नहीं है हमारी, इसमें कोई दो मानी है ही नहीं, झगड़ा है ही नहीं इस मामले में किसी किस्म का। तो पूरा कुरान बताता है, सारी हदीसें बताती हैं, तफसीर बताते हैं, उलमा कराम बताते हैं, सब एक ही लाइन पे खड़े हैं कि इसके बगैर तो चारे नहीं मोमिन का। इत्तबाए रसूल तो जिंदगी एक तौर है। कोई जिंदगी का फैसला हमारा गलत नहीं हो सकता, याद रखे, किसी चीज में हमारा नुकसान नहीं, मोमिन का नुकसान नहीं हो सकता, कोई परेशानी कभी जिंदगी में आ नहीं सकती, कभी उसका घर बर्बाद हो नहीं सकता, कभी वो परेशान होल निहाल नहीं हो सकता। अगर वो सारे फैसले अपनी जिंदगी के सुन्नत के मुताबिक करना शुरू कर, सबसे बड़ा डिफेक्ट जो आता है मोमिन में शैतान का, सबसे बड़ा वार जो आता है मुझे है, बस इतना कर लेंगे तो इतना छोड़ देंगे, इतना करें ये भी बड़ा मुश्किल है। एक एक चीज का अल्लाह के नबी ने हमें कौन फरमाया है, खाओ कैसे, पहनो कैसे, इससे पर्दा कैसे करना है, इससे कैसे छुपना है, इसके सामने कैसे आना है, ये महरम है ये गैर महरम है, इसके साथ बैठना है इसके साथ नहीं बैठना, यानी कोई पहलू ऐसा नहीं छोड़ा। ऐसा कोई नबी नहीं आया, ऐसा कोई नबी नहीं आया कि जिसकी सारी चीजें हमारे पास मौजूद हो। ये नबी ऐसा आया कि जिसकी आदतों को फरिश्तों ने लिखा है। ऐसे ऐसे इंसान अल्लाह ने पैदा कर दिए, उसकी आदत को लिखने के लिए, फैलाने के लिए, निकालने के लिए, कि क्यामत तक जब तक कुरान कायम है उस वक्त सुन्नत का कायम है, दो चीजें साथ चल रही है, वो ही सब कुरान और सुन्नत। वजह उसकी यही है, इसके बगैर तो मोमिन जिंदगी इनकम्प्लीट है, चल ही नहीं सकता, बर्बाद है, परेशान है, बुरा हाल है। वाहिद सुबह बस एक ही चीज है कि मेरी जो परेशानी है, मुसीबतें हैं, जो मेरे साथ सब कुछ मामला होते हैं घर में बाहर में, उसकी वजह कहीं बाहर तलाश ना करें, उसकी वजह फौरन समझ जाए कि मेरी जिंदगी जो है वो बगैर सुन्नत के मैं जिंदगी गुजार रहा हूं। एक सुराख हो जाए ना छत में हमारे, मुन्ना से ना कहते छोटा सा ही है ना सुराख, आपकी ड्राइंग रूम तक तबाह कर देगा, वो टपकना शुरू हो जाएगा, वहां से टपकेगा, जो आपने सोफा रखा है उस पर टपकेगा, फिर कारपेट पे टपकेगा, जितनी आप कसरत करते गफलत करेंगे वो पानी बहता चला जाता है, आपका सारा घर खराब हो जाता है एक सुराख से, होता ही नहीं होता। तो नबी पाक सम की एक सुन्नत का अमल हमारे घर में हमारी जिंदगी में नहीं होगा वो सारी जिंदगी को बेकार कर देता है, एक अमल आ गया वो सारी जिंदगी को आबाद कर देता है। मुझे किस्सा याद आ, जब शख्स आया काफी कुछ देर की बात, ये आम हमारे साथ, बड़े सख्त परेशान कहता हजरत मैं बहुत सख्त परेशान हूँ, बहुत दिनों से मिलना चाहता था ये फला, मैं फरमाया क्या बात है, काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या हुआ? बसी घर के अंदर बड़ा बसकूनी है हमारी, बड़ा मामला खराब है, क्या हुआ पता नहीं चलता जी, ठीक ठाक होते हैं बैठे बैठे लड़ाई शुरू हो जाती है, अभी मैं खा जितने लोग बैठे हैं ना शायद ये प्रॉब्लम 99% हमें समझ नहीं आता क्यों लड़ाई हुई, किस वजह से हमारी लड़ाई हो गई है, घर ही बहुत खराब हुआ है हमारा, बच्चों में बड़ा असर पड़ रहा है उसका जनाब, और पता भी चलते हैं कभी ठीक होते हैं तो उसके बाद फिर हमारा झगड़ा शुरू हो जाता है, कोई वजह नहीं समझती झगड़ी क्या है। मैं तो बहुत सख्त परेशान हूँ सर, मुझे सही बात बताओ माँ जी, क्या जादू किया है किसी ने, कहीं से जादू है जो हमारे घर में, हम तो ऐसे थे ही नहीं, किसी ने बाहर से कोई जादू किया है, कुछ ना छोड़े हैं और ये है तो फला है तो फला, और ये अकीदा हमारे शैतान ने 99% बना दिया है कि हर बीमारी हर चीज का फौरन कन्वर्ट किधर होता है, क्या किया है जादू। तो जो कहते हैं उनसे कहते हैं तो ये लोग कह रहे हैं तुम तो जादू किया जिन, तो भाई जो कह रहे हैं उनसे कहते निकाल दो निकलता आज तक मैंने किसी का देखा नहीं जादू, नहीं देखा असली चीज तो और, जब उसने कहा कि जादू किया है, तो महात्मा इस तरह भाई इस पर तो भाई एक चिल्ला लगता है, उस पर तो 500 पाउंड लगते हैं, उसमें फिर थोड़ा सदका देना पड़ता है, फिर जिन आता है उसको थोड़ा उसको भी खिलाना पड़ता है गोश्त, ये करते हैं नहीं करते है? 300 पाउंड आपके वहाँ लगेंगे जनाब, मैं दे दूँ 100 पाउंड दे, बस ये हजरत पैसे नहीं लेते हैं भाई, ये तो मस्जिद का डब्बा पड़े, इसमें जो आप डाल दें वो डब्बा उन्हीं का होता है तेरा कारोबार चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। तो ये मुसीबत तो हमारी है कि हमें शिर्क में मुतला कर दिया, शिर्क तक चले जाते हैं लोग, क्योंकि एतकाद उधर चला जाता है कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं उस इंसान को, ये हमें पता नहीं सजा है कि हमारे ईमान से खेल रहा है शैतान। कहते तुम अल्लाह ताला से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल नाबुद, कौन सा इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन है, 5 वक्त नमाज पढ़ के तुमने दुआ क्या मांगी है, और तो तुम तो किसी और से मदद मांग रहे हो, तुम तो उसके आगे जो गोप किन तो पूरा उसका है कि वो तुम्हें जो दे देगा उससे मेरा काम बन जाएगा, और बनता किसी का नहीं देखा। नहीं जी तो भाई बड़ा जीने ना जी, थोड़ा देर लगी, पूछ लो कितनी देर लगती है। मैं सुनो ये साहब कह रहे थे कि जी अब वो जिन आएंगे आपको एक इंजेक्शन देंगे, वो आपको इंजेक्शन देख के वो आपको सुलाएंगे, थोड़ी देर बेहोश करेंगे भाई मैं मान जिन्नात हैं, बुलाएं हैं, मुसीबत है, ये दुनिया है, कैद खाना है, हल क्या है इसका। तो ये सजाएं होती है इंसान पर, ये सजाएं हैं हकीकत में हमारे ऊपर, और अल्लाह इशारा करता है कि तू समझता नहीं मेरी सजा है, अभी मैं कुरान की आयतें पढ़ना शुरू करूं तो आप सब समझ जाएंगे कि बात बिल्कुल सही जो मैं कर रहा हूं। तो इसकी क्या है, तुमने मुझे ये बात कही जो मैं भूल जाऊंगा बाद में, मैं जी फरमाए फला मेरे ना फरमाने तो फला मेरे ये तो फला, आज हर आदमी हासिन कैद खाने की स्टोरी यही होती है आदमी की, डिस्टर्ब रहता है, अल्लाह ने कैसे पहला इंतजाम किया है इस कैद खाने। तो मैंने कहा भाई मैं वजीफा दें जी मुझे कोई कोई इस्तखारा निकाले, हालांकि इस्तखारे को ताल्लुक नहीं है इसका, कोई इस्तखारा इस्तखारे मफून हो रहा है फला, जिस देख के बता देने क्या है, ऐसी कहते हैं ना, मुझे उनकी जबान भी नहीं आती। मैं ये सब चीज छोड़ दो, वजीफा तुम्हें दे दो, थोड़ा अब वजीफा जरा हल्का देना जी, मैं जरा काम भी करता हूँ, लंबा चौड़ा वजीफा ना पढ़ नहीं सकता हूँ, आप ही कर दें जो करना है यही चलता है ना, ठीक है मैं कर दूंगा बस, इतने पैसे लगेंगे 200 पाउंड दे देंगे, 150 पाउंड दे देंगे। मैं अगर बात यह है कि वजीफा मैं आपको बता देता हूँ, 40 दिन जो वजीफा करें तो सुन्नत का तो यही है, 40 दिन चलो एक चिल्ला लगाओ, दुआ करूँगा अल्लाह ताला खैर करेगा आपकी परेशानी, बड़ा मेहनत मैं लिख लूँ जी, मैं कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, जबानी याद हो जाएगा। हमारा ईमान क्या होना चाहिए, हर चीज इलाज किस में है, सुन्नत में, किस में इलाज हमारा, आवाज नहीं आई अब भाई है, बस ये ईमान बना लो, फिर बोलो सुभान अल्लाह, की मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, उनकी दामन को पकड़ लो, गुलाम मुस्तफा हो जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इश्क में डूब जाओ, ये हमारी जिंदगी का पहला सबक है, याद रखें ईमान के बाद पहला सबक अल्लाह ताला दे रहे हैं, कुल इनकुम तुहिब्बुनुल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह फ़ग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, कितना बड़ा सबक दिया है, एक सबक पक्का कर लो, पक्का कर लो, अल्लाह कहते हैं कुल इनकुम तुहिब्बुनुल्लाह, पक्का कर लो, तुम्हें क्या अल्लाह की मोहब्बत दरकार है, अल्लाह चाहिए तुम्हें, तुम सिर्फ अल्लाह को पहचानना है, और फरमाया इसका एक ही रास्ता है, कोई रास्ते नहीं होंगे, अल्लाह ऐलान फरमा रहे हैं, जब ऐलान कुरान पढ़ते हैं सूरह इमरान, कोई रास्ता नहीं, अल्लाह ताला कहता है किसी रास्ते से भी तुम मुझे पा ही नहीं सकते, ढूंढते चले जाओ सारी जिंदगी, नहीं मिलूंगा, मस्जिदों में नहीं मिलूंगा, खाना काबों में नहीं मिलूंगा, दीवारों पर नहीं मिलूंगा, सिजदों में नहीं मिलूंगा, कहीं तुम्हें नहीं मिलूंगा, मिलूंगा तो एक ही जगह
سبحان اللہ, درے مصطفیٰ پہ ملو, مدینے کی طرف جھک جاؤ, اپنے رخ کو پھیر دو. کون کہہ رہا ہے؟ قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہتا بس تمہارا کام یہ ہوگا کہ میرے حبیب کے تم تابے دار ہو جاؤ, تم غلام بن جاؤ, تم عاشق ہو جاؤ. تو اللہ کہتا ہے یو بمکم اللہ, میں تمہارا عاشق ہو جاؤں گا. بولے سبحان اللہ, پھر بولے سبحان اللہ, پڑھے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم دائم. اب ہم اپنے گروان جا کے ہم کتنے بڑے عاشق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم کتنے جھکے ہیں, جبکہ اللہ نے اعلان کر دیا میں ہوں ہی نہیں, نہ نمازوں میں ہوں, نہ روزوں میں, نہ تو حجوں میں, نہیں کہیں نہیں مل سکتا میں تمہیں جب تک کہ تم فتبعونی. یہ کمال, یہ نہیں کہ عشق کرو محبت کرو, یہ سب جعلی چیزیں ہیں. شیطان جعلی عشق ڈال سکتا ہے, انجیکشن لگا کے جعلی محبت پیدا کر سکتا ہے. یاد رکھنا, ہر چیز شیطان ڈال سکتا ہے لیکن ایک چیز پہ دھوکا نہیں کر سکتا, وہ اتباع رسول ہے. سنت پہ دھوکا کر ہی نہیں سکتا آپ کے ساتھ. بولے سبحان اللہ, بڑا خوبصورت نقطہ اللہ نے مجھے سمجھایا, یہ پہلی دفعہ زندگی میں سمجھائی یہ بات. اللہ اللہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں سمجھا تھا یہ بات کہ ہر چیز میں شیطان داخل ہو جائے گا. قرآن پڑھ رہے ہیں شیطان داخل ہو جائے گا, کیوں؟ اللہ نے کہا نہیں قرآن, کہ جب قرآن پڑھنے بیٹھو بھائی میں ذمہ دار نہیں, اس باللہ ابن شیطان پڑھ لو, کہا نہیں کہا. ہر جگہ انتظام کیا کہ اس کا بھروسہ نہ کرنا, یہ ہر جی تمہارے خون کی طرح نماز پڑھو گے آ جائے گا, تنگ کرے گا, روزہ رکھو گے آ جائے گا, حج کرو گے آ جائے گا, یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ, جہاں اتباع رسول کی بات ہوگی فرمایا جہاں سنت ہوگی وہ شیطان نہیں ہو سکتا. پھر سبحان اللہ, کیا نقطہ بتا دیا ابھی بات سنیں, وہ ہی انسان مجین کیسے آئے گا, جادو کیسے ہوگا, ہوگا یہ ایمان ہے ہمارا؟ نہیں ہے, نہیں تھوڑا ہو جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان اس میں داخل ہو جائے, سنتوں کے اندر داخل ہو نہیں. جس وقت آپ نے سنت میں مل گیا شیطان کے اگینسٹ ہے. یہی ایک راستہ ہے جو ڈیفر کرتا ہے ہمیں کس سے, مجھے بولو, شیطان سے. یہ نہیں مل سکتے دو راستے, ہر جگہ پہنچ سکتا ہے شیطان, لیکن نبی پاک میں سنت ایک ایسا پروٹیکشن ہے کہ وہاں داخل ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ وہ اتنا بڑا پروٹیکشن بن جاتا ہے کہ الحمدللہ اور ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے آپ. تو میرا تو ایمان ہے, اللہ کرے ابھی آپ جیسا میرا ایمان ہو جائے, میں تو اتنا مضبوط نہیں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں. الحمدللہ آپ تو بڑے ایمان والے لوگ, اچھے لوگ ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا بھی اتنا مضبوط ایمان کر دے, لیکن اتنا تھوڑا بہت تو ہے میرا ایمان کہ بھائی اس بات پہ یقین کرے آدمی. میں نے کہا بھائی بات سنو تو میں تمہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں. وظیفہ میں نے کون سے بتانا تھا؟ نبی پاک کی یقین والی بات ہونی چاہیے نا, کیسے نہ ہو علاج اس کا. میں نے کہا بھائی ایک بات ہے, سبحان اللہ, صحیح ترمذی کی حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے, مسلم دوسرے انداز سے, ترجمے دوسرے انداز سے. اللہ نے نبی ارشاد فرمایا, آپ دونوں کہاں سے نکلتا ہے نقطہ سنت کا, ایسے کام چلایا کریں. ایک یہ دعائیں بنتی ہیں, دوا پتہ ہے کیسے بنتی ہیں؟ بڑا ہوتا یہی ہے, سارے ہربلز ہیں سب, ان کو جمع کرتے ہیں, ہربل کو ہرب کے ساتھ ملاتے ہیں, اس کو پھر ایک مجون ہوتے ہیں, پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ریفائن کرتے 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 بہترین دوا بن جاتی ہے. بڑی اچھی دوا بن گئی ہے, یہ آگے کیپسول میں آ رہی ہے, ہم گولیاں کھا, یہ دوا ایسی بنتی ہے. اب سنت دیکھیں کیسا کام کرتی ہے. حدیث نبی اس میں ارشاد فرمایا, ترمذی کی حدیث ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھو تو مسکرا کر دیکھو. سبحان اللہ, علاج تھا نا, پریشان تو سب سے بڑا علاج ہے. میں کہا بھائی سامنے آ گیا, اور پھر آ گیا تو مسلم کی حدیث ایک اور بھی ہے کہ یاد رکھو اس نیکی کو حقیر مت سمجھنا. مسلم فرمائے اس کو چھوٹا مت سمجھنا کہ تم کسی کو مسکرا کر دیکھ رہے ہو, اور جس کے بارے میں اتنی بڑی گارنٹی آ رہی ہو, تم مجھے بتائیں اللہ کے نبی جس کی زبان میں مبارک سے نکل رہا ہے, جس کی تو قرآن تعریف کرتا ہے, جس کی زبان مبارک کی مجنت کی ہوا, سبحان اللہ, وہ تو بولتا ہی نہیں बोलता है तो मेरी भाई से ही बोलता है सुभान अल्लाह, क्या जबान थी सुभान अल्लाह, मजंत किन हवा, शान बयान की अपने हबीब की, ऐसी जात है कि आदमी मर जाए उसको, हर वक्त सफर में नबी पाक में ख्याल जमाए रखे, बस ऐसे आशिक होना चाहिए हमें, बंदरों की तरह जिंदगी गुजारने की जिंदगी है यार हमारी, किसी से इश्क तो करो, और इश्क के काबिल एक ही हस्ती है, देखे ना हर आदमी अपना महबूब, मेरी जाने शादी करनी है, क्या तलाश में सबसे खूबसूरत लड़की हूं, होगा ना जी, अपनी बेटी की शादी करनी है जी, सबसे खूबसूरत माँ जो तलाश करेगी जी, मैंने अपने फला की शादी करनी है, बहन सबसे खूबसूरत तलाश करेगी नहीं, तो अगर आपने सबसे खूबसूरत महबूब तलाश करना है तो आपकी जात से बड़ी क्या चीज है, है कोई हसीन नबी पाक से ज्यादा भी, है किसी के जुल्फे मुबारक ऐसी, है किसी के चश्मे मुबारक ऐसी, है आपकी नाक मुबारक जैसी नाक, है किसी के जो होंठ जैसे आप जैसे होंठ, है किसी के गुलाब जैसे ये रुखसार, है किसी के, तो फिर हम उनसे क्यों ना प्यार कर लें, उनको क्यों ना महबूब बना लें, और हमेशा जब आप किसी से प्यार करेंगे महबूब बनाएंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं तसव्वुर में छा जाता है महबूब, हर वक्त ख्याल में रहता है मेरा मेरा महबूब है, आता ही नहीं जिससे प्यार करते हैं आप, अब तो आप बूढ़े हो गए जवान होंगे तो बीवी आती होगी ना खाम में जी, वाह शायद अब भी आ जाती है, बास तो आप नहीं आते, अब भी कहना दूसरी शादी के आज तैयार है, कर लें दसरा ना जी तैयार हैं, ठीक है जरूरत तो है ना जी, बीमारियों को खिदमत करेगी, तो इससे बड़ा कोई महबूब होगा मेरे भाई, मुझे बताए हमने किसको महबूब बनाया, इतनी सीरत नबी की किताबें रखी हैं, अपने ईमान को ताजा करने के लिए याद रखें, महबूब बनाने के लिए आदमी ये शोरा जो होता है एक ही चीज की तारीफ करते रहे महबूब की चाल की हेरने की फिरने की बोलने की, तो अल्लाह ने पूरे कुरान में तारीफ कर दी है, तारीफ मुसम्मिल का है, यासीन का है, तहा कहा है, क्या कुछ नहीं कहा अल्लाह पाक ने, कभी चार की उम्र की कसम खाइए, चार की कसम खाइए, कभी किसी किस किस से तस्वीर दी अल्लाह पाक ने, नहीं लेकिन हमें मोहब्बत फिर भी किसी और ही से होती है या नहीं, तो मैंने कहा भाई तुम एक काम करो, अभी सुन्नत के लाग कि जब तुम घर जाया करो तो एक काम करना, कुछ भी होता हूं तुम अपनी बीवी को मुस्कुरा के देखना, बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, है किसी को प्रॉब्लम आज ही हल हो जाएगा इंशाल्लाह, ना पराठे मिले तो फिर बताए फजी मुस्कान, बिल्कुल इससे क्या हो गई वजीफा बताए, मैं वजीफा बता रहा हूं ये, मैं नहीं बता रहा, ये तो आकाई नामदार का वजीफा जो तुझे बता रहा, वो तो आसानी चाहते थे हर चीज, ये नहीं इतने लंबे लंबे तुम्हें सीजदे बता दें और तस्वीरें बता दें, ये चक्कर नहीं था, मतलब चक्कर ही और था, वो तो अपनी एक अदा का छोटा सा नुक्ता बताते थे कि जा सारा काम इससे हो जाएगा तेरा, मेरी इस चीज की नकल कर ले, बोले सुभान तो उसने गया जी, कितने दिन के मगर 40 दिन के बाद, ये भी सुनना था सुभान इलाज के लिए, मैं 40 दिन एक दिन ऐसा ना गुजरे तू अंदर जाए उससे मुस्कुरा, बस जब भी देखे मुस्कुरा के बात कर उससे, कहते ठीक है इंशाल्लाह, और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करना, वो मुझे गाली दे मैं देने दे, मैं देखता हूँ कब तक गाली दे, तू हंस के बात कर उससे, बस देखे तो सबसे पहला काम, अब ये भी याद रख ले दुनिया कितनी बड़ी बात बताई है, जब अपने मुसलमान भाई से देखो तो क्या करो मुस्कुरा के बात करो, तो करता है ऐसे आज मुसलमान भाई आ रहे हैं, हंसी तो दूर की बात है, उससे हंसेगा जरूर, आने से पहले ये बड़ा शैतान आदमी दिल में आ रही है, इसने मेरा फला काम किया था, देख चोर कितना जबरदस्त आदमी है, अपने आप को बड़ा क्या, वो आगे जा रहा है तुम भी आगे जा रहे हो मिलने करीब आ रहे हैं, जब नजदीक आएगा तो यहाँ जो शैतानी हंसी है ना ऐसे करने वाली, देखा ना जो हंसते हैं ये है शैतानी हंसी, इसको कहते हैं मुनाफिक हंसी, तो सारे आज हम भी काम करते हैं एक दूसरे को देखे ना, यानी बादशाह को चौड़ी कर लेते हैं, अंदर दिल जो है वो कुछ और सोच रहे, वो खुश कर रहे हैं अपनी तरफ से यूं करके ना, करते ही नहीं करते, आप जा रहे हैं ये है ना, तो हमने भी ये तरीका अख्तियार कर लिया, ये मुनाफिक है नफाक है, ये बच्चों इन चीजों से असल को छोड़ के नकल ले रहे हो, यहां फना मुस्कुराओ, और मुस्कुरा आप नहीं सकते, एक और टॉपिक्स पर आ रहे हैं,
ये बहुत दूर ले जाएगी बात आपको इलाज में, आपको सही बता रहा हूं कि इतना बड़ा इलाज है कि आपको इतना बड़ा इंसान बन जाएगा कि आप औलियाल्लाह हो जाएंगे। ये पूरा चैप्टर दिया अल्लाह के नबी ने, इस मुसराहट से आप नमाजी हो जाएंगे, तहज्जुद गुजार हो जाएंगे, ये बता रहा हूं आपको, ऐब निकल जाएंगे, बहुत बुलंद इंसान हो जाएंगे, वहां ले जा रही है चीज आपको, आप तह तक पहुंच नहीं सकते इसकी, कहां ले जाएगी, एक हदीस की छोटा सा टुकड़ा आपको बताया, छोटा सा बताऊंगा अभी ज्यादा नहीं। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह आज के बाद वादा करता हूँ मैं जाऊँगा, तो बेशक जूते पड़े कुछ हूं। मैंने मुस्कुरा के बात की, यकीन करना 40 दिन के बाद आया, कहते घर का नक्शा ही बदल गया जरा, अजीब जादू चीज थी जी वो, तो ऐसा जन्नत बन गई हमारी कि मैं पहले हंसता हूँ, मुझसे पहले वो हंस पड़ती है, इस बहन से गुस्सा आता था, हम हंस दोनों मुस्कुराहटों को चले जाते हैं दूसरे की, क्योंकि एक सुन्नत है, तभी बनाए कि मुस्कुरा कर देखो कहां से कहां बात हो जाएगी। जब तुम हमारा अगर ये माशरा पैदा हो गया, मैं बताता हूं कि हम एक दूसरे को हकीकी मुस्कुराहट से देख रहे हैं, वो मुनाफिकाना नहीं देख के वो चेहरा जो है वो नहीं, हकीकी मुस्कुराहट से देख रहे हैं, तो वो जो हकीकी जो मुस्कुराहट होगी, दिल में मोहब्बत होगी, ना गिबत होगी, ना हसद होगी, ना जलन होगी, ना बुखत होगी, सारों से तुम्हारा सीना पाक हो जाएगा, सुभान अल्लाह, होगा नहीं अब है तो बहुत अच्छे तारो ये जनाब मिलेंगे, हाँ क्या हाल चाल है जनाब, ठीक ठाक लेंगे, चलते चलते आ दोनों ने, बड़ा जलील आदमी है, बड़ा खबीस आदमी है, देखो जी इसने ये किया, मिलते मिलते जब यहां आए ठीक ठाक हो जाए, बड़ा मुनाफिक, ये जो मुस्कुराहट अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ये मुस्कुराहट आसानी से नहीं आ सकती, इसको पैदा करना पड़ता, आप नहीं हंस सकेंगे, वो ही हंसेंगे वो जो ये हंसते हैं ऐसे चेहरे वाले, इस मुस्कुराहट को पैदा करने के लिए एक चीज करना पड़ती है, वो क्या है, दिल की सफाई, मैंने सुभान अल्लाह, ऐसी चीज का नाम है, जब तक दिल आपका साफ नहीं होगा, दिल पे आप मेहनत नहीं करेंगे, मुझे बताएं तो हकीकी मुस्कुराहट कैसे पैदा होगी आपकी, आप कभी नहीं हो सकते, बनावटी चीज रहेंगी आप, तभी तो कहते हैं कि दिल जो है एक ऐसी चीज, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक कोश का लोथड़ा ऐसा रख दिया अल्लाह पाक ने, ऐसा कंप्यूटर रख दिया है छोटा सा, वो ऐसा कंप्यूटर छोटा सा कि बस इसकी तफ्तू तवज्जा रखना, इसको गंदा ना होने देना, तेरी सारी जिंदगी जिंदगी जो तेरी पाक और साफ हो जाएगी, है या नहीं, तभी तो ना मुस्कुराहट आती है, ना हमें किसी पे तहम आता है, ना किसी पे तरस आता है, ना किसी की फिक्र होती है, ना मुसलमान मुसलमान से प्यार करता है, कुछ नहीं, हमारा स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है, स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है हमारा, तो अल्लाह के नबी सुनो दो पैगाम दिए इसमें जबरदस्त, कि मोमिन की शान ये होनी चाहिए कि उसके इतना खूबसूरत दिल होना चाहिए कि जब वो किसी दूसरे मुसलमान को देखे तो दिल में उसकी कोई चीज ही ना हो, तो एकदम उसके दिल से कैसी रहमदारी प्यारी और मुस्कुराहट निकलेगी, जिसका जवाब मुस्कुराहट से देगा और मोहब्बतें भरना शुरू हो जाएंगी। हमें जेल खानों की क्या जरूरत है, हमें पुलिस की जरूरत ही नहीं है, बस यही बता रहा हूं, हमारे मुआश में तो कत्ल हो ही नहीं सकता, झगड़े हो ही नहीं सकते, फ्रॉड हो ही नहीं सकते, हम तो जुल्म कर ही नहीं सकते, हमारे तो तस्वर भी नहीं आ सकता ये फला मजहब का, ये फला मजहब का है, हम तो इंसानी हर से हर एक से प्यार कर सकते हैं, हर एक को सीने से लगा सकते हैं, एक मोमिन की बात कर रहा हूं आपको, आज हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते, डिफरेंस ही नहीं हमारे अंदर, फर्क ही नहीं आ सकता किसी चीज में, कि कोई हैट्रिक हमारे अंदर हो किसी इंसान के लिए, ये फला है, ये फला है, ये फला मजहब से ताल्लुक है, कितनी दुनिया खेल रही है हमारे इस चीज से कि हमारे दिनों से सुन्नतों को निकाल के हमें ऐसा काबू किया कि हर एक से नफरत करना सिखा दिया, कितना बड़ा अजाब है अल्लाह ताला का हमारे पर, वरना मुसलमान को काबू नहीं हो सकता था, मुसलमान को कोई काबू नहीं कर सकता, वो तो बहुत ही हलीम है, रहम दिल है, मोहब्बत करने वाला है, प्यार करने वाला है, वो किसी से नफरत नहीं करता, चाहे किसी मजहब का कोई इंसान हो, नफरत का ताल्लुक ही नहीं है, कभी पहल नहीं करेगा किसी को मालूम, कभी कत्ल नहीं करेगा, कभी नहीं कत्ल करेगा कोई भी हो पहले, हत्ता जब तक उस स्टेज पर ना आए जिस पर कहा जाता है कि भाई अब ये तुझे मार देगा, अब तो अपने आप प्रोटेक्ट कर अपने आप को, ये हमारी टीचिंग है मजहब की, बहुत बेहतरीन चैप्टर है इस्लाम, बेहतरीन चीज है मोमिन, एक मोमिन
پورے ملک کے لیے رحمت بن سکتا ہے. میں سمجھ بتا, ایک انسان چاہیے, ایک پوری قوم کے لیے ایک انسان چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں, آپ کسی قوموں کو بدلنا چاہتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, جب دیکھیں عرب میں کیا تھا, پوری قوم بت پرستی کو کچھ تھا, کو قتل تھا, ہر تھا, بچوں سے اپنی شادی کر رہے ہیں, بچوں کو چھوٹے چھوٹے قتل کر رہے ہیں. یہاں انسان تھے, ایک بچی میری ہے, خون سے نکلی, اس بچی کو پکڑ کے ماں اور باپ جا کے اس کو دفن کر رہے ہیں, وہ چیخ رہی ہے کہ بابا میرا قصور کیا ہے. تصور کریں اس ظلم کو, وہ ریوڑی کہ میں نے کیا کہ آپ مجھے دفن کیوں کر رہے ہیں ماں, ماں باپ پکڑ رہے ہیں تجھے دفن ہونا چاہیے, ہم تجھے قتل کریں گے, بند کر رہے ہیں اس کو. تو اللہ پاک نے رحمت لانے کے لیے کیا کیا, کتنے لوگوں کو بھیجا, کتنے آدمی کو بھیجا, صرف ایک انسان کو بھیجا. سبحان اللہ, یہ سنت الہی ہے. کسی کو صحیح کرنے کے لیے جماعت نہیں بھیجتے اللہ تعالیٰ, کس کو بھیجتے ہیں, ایک معاشر ختم کے ایک اولیاء اللہ آتا ہے. پورے ہندوستان میں خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ تشریف لائے, آئے تھے نا, یہ کتنے آئے تھے ان کے ساتھ, 9 لاکھ انسانوں کو مسلمان کر دیا تھا. میں سے تو ہم ایماندار بنے بیٹھے ہندوستان پاکستان سے, کہاں سے اسلام آیا. تو ایک انسان میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے, ایک انسان میں اتنی طاقت ہے پورے معاشرے کو بدل دیتا ہے. اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے, چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی. ایک انسان ایک معاشرے میں پیدا ہو جائے, اس کو اللہ پیدا کر دے, وہ سنت رسول سے متبع ہو, بس ہو گیا کام, بن گیا, رحمت آ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی ایک انقلاب آئے گا, آج بہت برے حالات ہیں ہمارے اسلام میں, ہم تو یہاں بیٹھ کے چوزے کھا رہے ہیں نا, لیکن تھوڑے دور جا کے دیکھیں, تھوڑا سا فاصلے سے دیکھ لیں. اب تو فاصلے ختم ہو گئے, سب چیزیں نظر آتی ہیں, لائن نظر آتی ہیں, آپ کو آتی ہیں نا, ابھی جا کے آپ جانے کے بعد کھول لیں اپنے کمپیوٹروں کو, جو کچھ بھی ہے, ساری دنیا کے حالات دیکھیں اس وقت کیا ہو رہے ہیں, عجیب دھن نظر آئے گی آپ کو, کس معاشرے میں, اس دھن میں مسلمان کہاں کھڑا ہے, کوئی کہاں, کوئی کہاں, کوئی ہے یا نہیں ہے. ہم تو اپنے آپ کو شیلٹر سمجھتے ہیں, آئیں گے بس نہا دھو کے بیٹھ جائیں گے, جناب جمعہ سنیں گے, جمعہ پڑھیں گے, پڑھے تین مار لیے اپنی, یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں پکچریں. کبھی وہ لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. عراق کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ہر عروجوں کے دن میں ہے, ہر نصیبوں کے دن میں ہے. جب عروج ہوتے ہیں تو کیا ہے, زوال آنا ہی ہوتا ہے, اس کو گھسنا پڑتا ہے. میرے بھائیو, علاج ایک ہی ہے ہماری زندگی کا, وہ کیا ہے, نہ لڑائی ہے, نہ فتنے ہیں, نہ قتل ہے, نہ غارت ہے, نہ دہشت گردی, نہ دہشت گردی کچھ نہیں, مومن کی شان ہی نہیں ہے. اس کا تو یہ کہ تو اپنا سوچ اور کیا بن, متوائے رسول ہو جا, عاشق رسول ہو جا. ہم ذمہ داری دیتے ہیں کہ ہم تجھے اپنا محبوب بنا لیں, تو جس کو محبوب بنائیں گے اس کو بھوکا ماریں گے, اس کو بیمار کریں گے, نہیں, اس کے ساتھ تو فرشتے اس کے لیے الحمدللہ سلام کے لیے آئیں گے. اللہ کے شرط یہ کہ کوئی معاملہ ہمارا زندگی کا ہو, آخری میسج ہے اسلام کا, کوئی بھی ہم ہمارا زندگی کا معاملہ ہو, ہم نے رخ سے فیصلہ کہاں سے کس سے کرانا ہے. سنت کیا تھا نبی میں, اس میں کیا تھا, یہ جھگڑا ہو گیا میرا میری بہن کے ساتھ, رک جائے, کوئی کسی کی بات نہ مانے, کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے, کہ اس سے دوستی کیسے کی جائے, آئے میں اس کے آگے بڑھوں یا یہ میرے آگے بڑھے, یہ میں کاروبار کر رہا ہوں, دیکھیں تھے اس میں نبی کی سنت کیا ہے, کہ گاہک جب آئے اس کو پیسے واپس کر دیں, اسے لڑنے لگوں, اس کو ادھار واپس کر دوں, یہ کام میرے لیے حالات کچھ کسی جگہ ہے ہی نہیں. صاحب ہمارا ایمان سے بتایا, نہ گھر میں, نہ باہر میں, نہ بس ایک مسجد ہے اس میں آگے, وہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں پیچھے سے امام کی, اس امام کو مانتے بھی نہیں ہم. آج تو فیصلہ یہ ہے کہ جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں, مسجدوں میں جا کے آپ دیکھیں اسی امام کی چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں, بھائی نماز پڑھ کے نکلے ہیں, باہر جا کے دیکھیں اسی امام کی غیبتیں کر رہے ہیں, برائی کر رہے ہیں. یہ اتنا تو نفع کے مارے ہیں, اتنا تو منافقت ہے. اس امام کو ہی نہیں مان رہے جس کے پیچھے اس نے امامت کی ہے, پوری ایک نماز کی جو ہمیں پڑھا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, عید ساتھ وہ جو ہمیں سنا رہا ہے قرآن, تو بھائی باہر ہی نکلیں گے, یہ جی کیا قرآن پڑھا ہے, سب بڑا یہ جی فلاں ہوا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں گیٹ سے پڑھ, ٹاپک ہی یہ نفاق بجا, یہ ساری زندگی ہماری سنت کے خلاف ہے. آئیں آج سچے دل سے, یہ تو ایک ہماری جماعت ہے, इसलिए बैठे हैं ना हम लोग, कुछ भी बातें करें और समझें। मैं कुत्ते कीड़ तो नहीं कर रहा आपसे, तो मैं अपने अपने गिरबान में झांक रहा हूँ कि अल्लाह हम किस मामले में। तो आज एक ही चीज नजर आती है मुझे सफ़े कि सबसे वजह हमारी जो खराफत की वो क्या है कि हमने नबी पाक की तबाह को छोड़ा हुआ है। आज हम अपनी जिंदगी में फैसला कर लें कि हर चीज का फैसला हमने किसे लेना है, सुन्नत शरीफा से, बस खत्म। यहाँ नबी हमें क्या फरमाया, यहाँ कैसे फरमाया, यहाँ कैसे फरमाया, अल्लाह की कसम खा कहता हूँ कि ये दुनिया हमारे जन्नत बन जाएगी, कोई कारण नहीं, क्योंकि हम वो करें जो नबी हमें बताया है, उसमें गलत कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता गलत। मिसाल मैंने आपको दे दी कि कहाँ घर बर्बाद हो रहा था, तलाकों में जा रहा था वो आदमी, जिन्नात की तरफ जा रहा था, जादू करा रहा था, मैंने उसको यही बताया कि तुम मुस्कुरा के देखो अपनी बीवी को, नबी ने इलाज रखा है इसके अंदर, उसे काम किया देखे इलाज। तो भाई वादा करें हम सब इंशाल्लाह अपनी जिंदगी हम किस पे गुजारेंगे, सारा ऊपर नीचे पर सबसे पहले अपने इस जो हमारा 6 फुट का जो जिस्म है इसको अपने ऊपर सुन्नत लेके आए पूरी, नहीं समझे, फिर इस पे सुन्नत लेके आए कि नबी पाक को क्या चीजें पसंद है, कैसी शक्ल पसंद है, कैसी बाल पसंद है, कैसे ऑब्वियस है कि आपके हुक्म इसमें क्या है, चलते चलते अंदर बाहर साफ शफाफ होना शुरू हो जाएगा, आप सब बीमारी निकल जाएंगी। मैंने बताया ना एक ही बात है कि अपने मुसलमान को मुस्कुरा के देखो, इसमें कितनी बीमारियां निकल गई, निकलती नहीं गई, या तो हम मुनाफिक होंगे या फिर मुसलमान होंगे, या मुसलमान होंगे तो मुस्कुराएंगे किसी को देख के, मुनाफिक होंगे तो हंसी नहीं सकता आदमी, हंसी कैसे आएगी, तो मुंह चौड़ा होगा। तो अल्लाह के नबी की सुनत ऐसी कि इंसान प्रॉपर मुकम्मल, जब तो कहते हैं कि लाजी जब तक इंसान मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकता, यह है ना हदीस, जब तो क्या लगे नबी ने कि तुम कल मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं तुझे हर चीज से अजीज ना हो जाऊं, है ना, ये यही तो बात है, करेंगे भाई अमल सुन्नत पक्की चीज इंशाल्लाह ताला, मुझे भी हम सबको तौफीक नसीब हो। بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين طه ياسين الحبيب الأمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا فضيلا كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطبنا وأمدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقضى حاجاتنا يا دافع البليات اطفئ بلياتنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم دمر هموم كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.